नमस्कार। तो अपन का बिंदु चल रहा था वाच्य। जैसा कि वाच्य की परिभाषा में कल आपने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसकी जानकारी देने वाले जो कारक हैं उन कारकों को वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य के बारे में आप जान चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा जो संबंध है वो कर्ता से होता है, या क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कृतवाच्य में यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, या कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, और कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे कल दो उदाहरण देखे थे कि लड़का दूध पीता है तो लड़का एक वचन है और पुल्लिंग है, तो पीता है क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग है। इसी प्रकार लड़कियां दूध पीती हैं, लड़कियां बहुवचन है, लड़कियां स्त्रीलिंग है तो पीती बहुवचन है और स्त्रीलिंग। तो ये तो हुई थी अपन की कृतवाच्य की बात। आज जो अगला बिंदु है वो है क्रमवाच्य, यानी वाच्य का दूसरा जो भेद है वो है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, जैसा कि कृतवाच्य में तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, लेकिन क्रमवाच्य में जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा या प्रधान संबंध है वो वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। अर्थात क्रिया की लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म होता नहीं है, और क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे एक उदाहरण है कि राम ने चाय पी या सीता ने दूध पिया, ये दो वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग और एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग और एक वचन के अनुसार आई है। द्वितीय वाक्य जो है सीता ने दूध पिया, तो द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त पिया पुल्लिंग और एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध यानी दूध है वो पुल्लिंग है और एक वचन के अनुसार आया है। तो इस प्रकार ये हुआ कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य में वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और यदि कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। तो ये तो हुआ आपका क्रमवाच्य। अब तीसरा जो प्रकार बचा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।